बोध, विरोध और प्रतिरोध। जिस बोध को लेकर हबीब तनवीर बंबई से दिल्ली आए, उसमें अंतर्निहित विरोध और प्रतिरोध के तत्व तो साफ थे, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग सीधा और सरल नजर नहीं आता था। क्या गलत है और क्या नहीं किया जाना चाहिए, यह बात जितनी स्पष्ट थी उतनी ही जटिल। यह बात थी कि जो किया जाना है उसका स्वरूप क्या हो और कैसे हो। पाश्चात्य रंगमंच के प्रचलित और स्वीकृत मुहावरे के स्थान पर ये जिस मुहावरे को स्थापित करना चाहते थे, उसका कोई सर्वसम्मत या निश्चित स्वरूप सामने नहीं था। इप्टा ने उन्हें भारतीय लोक नाट्य रूपों की शक्ति और ऊर्जा से परिचित होने का तो अच्छा अवसर दिया, लेकिन समकालीन नाटक के लिए उसके कलात्मक प्रयोग की राह तलाश की जानी थी। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के मोहरे उनके द्वारा लिखा गया पहला नाटक था, जिसे सबसे पहले दीनानाथ पाठक ने और बाद में उन्होंने भी सफलतापूर्वक इसका निर्देशन किया था। लेकिन इस नाटक की सफलता के बावजूद उन्हें इस बात का गहरा एहसास था कि इसका मुहावरा वह नहीं है जिसको उन्हें तलाश है। उस मुहावरे की खोज अभी भी की जानी थी, लेकिन इसके बावजूद उस वक्त उनके मन में जो कुछ उमड़ घुमड़ रहा था वह काबिले गौर है। वह अपने भवितव्य के संदर्भ में समूचे भारतीय परिवेश को देख रहे थे और उसका विश्लेषण कर रहे थे। भारतीय कला और संस्कृति को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विवेचित करने की बात भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि समकालीन भारतीय संस्कृति पूरी तौर पर दो वर्गों में विभाजित हो गई है। खासतौर से आज़ादी के बाद हमारे देश का अभिजात वर्ग अंग्रेजी सभ्यता तथा विचारों से इतना अधिक आक्रांत था कि गांव में पनपते हुई अपनी संस्कृति से उसका मानसिक तौर पर कोई संबंध नहीं रहा। देश के अंचल में पनपती हुई संस्कृति को वह हेय दृष्टि से देखने लगा था। वह बहुत कष्टकारक बात थी। दूसरी ओर भारतीय संस्कृति की रक्षा का नारा बुलंद करने वाला एक वर्ग ऐसा भी था जो घोर कट्टरपंथी था, अंग्रेजों तथा अंग्रेजियत की हर चीज़ का घोर विरोध करने लगा था। खान पान, वेशभूषा, शिक्षा दीक्षा, रीति नीति, आचार व्यवहार आदि हर एक बात में वह अंग्रेजों के शासनकाल के और उनकी सभ्यता के हर एक चिन्ह को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध नजर आता था। यह बड़ी विचित्र स्थिति थी जो व्यवहारिकता से कोसों दूर थी। हबीब तनवीर ने इस स्थिति का आकलन करते हुए कहा, हमारे देश में भले ही राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का मंतव्य कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो, लेकिन जब उन्होंने भारतीय जनसामान्य को शिक्षित करने के उद्देश्य से पश्चिमी पद्धति के विचारों को प्रतिपादित करने का बीड़ा उठाया तो निश्चयतः उन्होंने हम सबको भारतीय आंग्ल बनाकर छोड़ दिया। और अगर हम में से कुछ लोग अतिराष्ट्रीयतावादी विचारों के संपोषक बन गए तो यह भी उसी संवृत्ति का परिणाम था। निश्चित तौर पर यह भी उसी देशीय आंग्लेयता की प्रतिक्रिया थी कि कुछ पंडितों और उनके समर्थकों ने संस्कृति और भारतीय सभ्यता के नाम पर एक असंभव पुनरुत्थान का नारा बुलंद किया। उनका परामर्श था कि शैतान को खदेड़ने के लिए रक्त रंजित खाई में कूद पड़ो। ये दो ध्रुव उस समय हमारे देश में अपनी चरम अवस्था में थे। आजादी के बाद देश की शासन व्यवस्था तथा शिक्षा और संस्कृति का विकास कैसे हुई, संबंध में इन दो विचारों के बीच जबरदस्त टकराव थे। पिछड़े भारत की पूरी दुनिया के नक्शे पर तेजी से स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक उपलब्धियों और औद्योगिक विकास को नकारना हमारे देश के नेताओं को स्वीकार नहीं था। इसलिए उनका विचार था कि अंग्रेजी शिक्षण पद्धति और पश्चिमी सभ्यता की श्रेष्ठताओं को अंगीकार करना अनिवार्य है। यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि इस विचार के अंतर्गत औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास की दिशा में हमारे देश में आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप भी छोड़ी। दो सदियों से भी अधिक गुलामी के दौर से गुजरने के बाद केवल आधी सदी में हमारे देश ने इस दिशा में जो उन्नति की है वह निस्संदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन यह तरक्की एक तरफा हुई। शहरी अभिजात वर्ग के लोगों को विकास के जो अवसर मिले वे गांव में रहने वाले अनपढ़ गरीब किसानों मजदूरों को सुलभ नहीं थे। इसका परिणाम यह हुआ कि कस्बों और गांवों में, खासतौर से देश के आंचलिक हिस्सों में बसे वाले लोगों को इसका भयंकर दुष्परिणाम झेलना पड़ा। उनकी जीवन पद्धति, सामाजिक मान्यताएं, कला और संस्कृति आदि उनकी जीवन तत्व शहरी विकास के मानदंडों के अनुरूप न होने के कारण छिटक कर दूर जा पड़े। शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन के बीच इतनी बड़ी खाई संभवतः पहले कभी नहीं थी। ग्रामीण जीवन में शोषण अत्याचार की परिभाषाएं नया रूप ग्रहण करने लगी। शासन तंत्र उनसे पूरी तरह विमुख हो गया और हमारे देश की आंचलिक संस्कृति शहरी अभिजात वर्ग के लिए अजूबा बनकर रह गई। उनका अपने देश की प्राचीन संस्कृति से कोई गहरा रिश्ता नहीं बन पाया। कमोबेश यही स्थिति आज भी बरकरार है। दूसरी ओर भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा का अलग जगाने वाले वर्ग ने भी इस आंचलिक क्षेत्र को अनदेखा कर दिया। उनके लिए भी गाँव के लोग न तो केवल अशिक्षित थे बल्कि कालाशून्य और संस्कृति विमुख भी थे। उनके विचारों में भारतीय संस्कृति का केवल वह स्वरूप था जो विशुद्ध अभिजात वर्ग की संस्कृति का पोषक था। वे आधुनिक संदर्भों में प्राचीन कला और संस्कृति की पुनः प्रतिष्ठा के लिए ऐसे सूत्र गढ़ने में असमर्थ थे जिसके अवशेष आंचलिक क्षेत्रों में, आदिम जनजातियों में और देश के आंतरिक भागों में आज भी विद्यमान है। या तो उनसे उनका परिचय नहीं था अथवा उनकी दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं था। ऐसा नहीं कि यह स्थिति आज़ादी के बाद बनी हो। अंग्रेज शासन के दौर में तो यह विभाजन और भी तीखा तथा अमानवीय था, लेकिन आज़ादी के बाद के पहले और दूसरे दशक तक इस संबंध में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों की सोच बहुत कुछ निराशाजनक रही। राजनीतिक दलों का उद्देश्य विशुद्ध दलगत था और वे इस स्थिति का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश में थे। समाज और संस्कृति के बारे में सही विचारों के पोषक तत्व हाशिए पर डाल दिए गए थे और अभिजात वर्ग की सोच ने हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। इस विडम्बनापूर्ण स्थिति में हबीब तनवीर ने भारतीय संस्कृति और कला के संपोषण के लिए जिस संघर्षपूर्ण राह को अपनाया, वह इन दो ध्रुवों से अलग थी। उन्होंने सबसे पहले इस लोक की संस्कृति की ओर देखा, जहाँ हर तरह के अवरोधों, संकटों और असंभव स्थितियों जूझने के बाद भी भारतीय संस्कृति के अवशेष अक्षुण है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में देश के गिने चुने लोग ही उनके विचारों से सहमत थे, लेकिन वे भी वैचारिक स्तर पर ही अपनी जगह बना पाए थे। व्यवहारिक स्तर पर कोई सफलता नहीं मिली थी। अत्याचार, उत्पीड़न और शोषण की मारक स्थितियों के बावजूद जो लोग अपनी कला और संस्कृति बचाए रख सकने में समर्थ थे, वही उनकी आंतरिक शक्ति बने। इस संबंध में उन्होंने कहा, विश्व संस्कृति को अंगीकार करने से पहले हमें अपनी संस्कृति के प्रति सही समझ और जागरूकता की जरूरत है। ऐसा नहीं कि विदेशी प्रभाव अपने आप में बुरे हैं या त्याज्य हैं, लेकिन उनको अपनाए जाने से पहले हमारे सामने सभी तरह के विकल्पों में से श्रेष्ठ के चुनाव की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके लिए अपनी परंपराओं का ज्ञान सबसे पहले अपेक्षित है। यह एक विडंबना ही है कि हमारी सबसे समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा उन क्षेत्रों में पनप रही है जो अत्यंत गरीबी की मार जी रहे हैं। दूसरे शब्दों में, कला और संस्कृति उन क्षेत्रों में सबसे अधिक समृद्ध है जहाँ के लोग सबसे अधिक गरीब हैं और भारत की अधिकांश जनसंख्या इसी क्षेत्र से संबंधित है। स्पष्ट है कि उस समय गांव में रहने वाले लोगों की गरीबी और शहरी विकास की तुलना में अत्यंत पिछड़ेपन से देश के नेता परिचित थे, लेकिन कला और संस्कृति से संबंधित इन विचारों में सहमत नहीं थे। उस समय अपने इन तीखे और विरोधी तेवरों के कारण हबीब तनवीर अभिजात वर्ग की आंखें किरकिरी बन गए, लेकिन भारतीय रंगमंच के भविष्य के संबंध में उनके विचारों को अनदेखा किया जाना लगभग असंभव सा हो गया था। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश की व्याख्या करते हुए जिस निष्कर्ष पर पहुंचे, वह भी ध्यातव्य है। यह बात भी हमें शुरुआती तौर पर ही अवश्य तरह समझ लेनी चाहिए कि शहरी रंगमंच ने जो स्वरूप हमारे सामने स्थापित किया है, वह पश्चिमी थिएटर से मांगा हुआ है और हमारे देश की सामाजिक बुनियादी समस्याओं, सांस्कृतिक बुनावट, जीवन पद्धतियों और सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने में एकदम असमर्थ है। भारतीय संस्कृति के स्वरूप की सही पहचान हमें भारत के देहातों, गाँव और कस्बों में मिलती है। यहाँ के गाँव में ही हमें अपनी प्राचीन गौरवशाली नाट्य परंपराओं के संदर्भ संकेत मिलते हैं जो आज भी बरकरार हैं। यहाँ के नाट्य दलों को ही समुचित प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। उन्हें उनके संपूर्ण विकास के लिए एक ऐसे माहौल को बनाने की जरूरत है जहाँ वे सहज रूप से विकसित हो सके। दूसरी ओर, जब तक शहरी युवा वर्ग के लोग पारंपरिक नाट्य रूपों में आत्मगत तादाद में स्थापित नहीं करेंगे, तब तक सही मायनों में भारतीय रंगमंच, जो कि अपनी जड़ों से गहरा जुड़ा हो और साथ ही आधुनिक तथा विश्वजनीन हो, स्थापित नहीं हो सकता। सच्चा भारतीय रंगमंच कैसा हो? इस बोध के गर्भ में स्थापित मान्यताओं और स्थितियों के प्रति विरोध तथा सही अर्थ की तलाश में गलत दिशा की ओर जाने वाले विचारों का प्रतिरोध अंतर्निहित था। शायद हबीब तनवीर के रंग जीवन का सबसे अधिक संघर्ष का समय यही था। इस समय वे गुप्त सांस्कृतिक अंधेरे में, विशेष रूप से रंगमंच के संदर्भ में, अपनी जिद की लौ के सहारे दुर्गम और बिहड़ पड़ावों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। एक बड़ी दिलचस्प बात और, बम्बई में हबीब तनवीर शायरी, सिनेमा, समीक्षा और रंगमंच की दुनिया में अपनी पहचान बना चुके थे। वहाँ रहकर जीवन यापन के लिए विशेष संघर्ष करने की जरूरत नहीं थी। उस दुनिया को छोड़कर जब ये दिल्ली आए तो कोई परोसी हुई थाली उनका इंतजार नहीं कर रही थी। ऐसा नहीं था कि दिल्ली में किसी बड़ी संस्थान के आमंत्रण पर या किसी अत्यंत आकर्षक प्रस्ताव के कारण वे दिल्ली आए हों। उनके आंतरिक बोध के उचित मूल्यांकन के लिए तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन के विगत अनुभवों को याद ताजा करते हुए उन्होंने लिखा, दिल्ली के जीवन से व्यस्त होने में मुझे समय लगा। अपना जीवन वहाँ एलिजाबेथ गवा के स्कूल से शुरू किया। मैं उनको अरसे से जानता था। वे एक महान महिला थी। वे जर्मन थी और एक बहुत अच्छी शिक्षा विशारद। वे कृष्ण मेनन, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की अच्छी मित्र थी और इन्होंने कृष्ण मेनन के सुझाव पर बच्चों के लिए एक नए प्रकार की शिक्षा प्रणाली बनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने एक शिक्षा पद्धति की शुरुआत की जो ठीक मॉन्टेसरी की तरह नहीं बल्कि कुछ और थी। मॉन्टेसरी की कुछ विशेषताओं के साथ कुछ अपना नया जोड़ते हुए बच्चों की शिक्षा के लिए एक बहुत अच्छी पद्धति थी। वहाँ मैं बच्चों से घिरा हुआ बैठता, उनके ड्राइंग रूम में बच्चों को लोक कथा सुनाता और जिस कहानी में बच्चे सबसे अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करते उसे मैं नाटक में तब्दील कर देता। इस तरह एक लोक कथा पर एक नाटक बना। हमें हिंदुस्तान और तुर्की कहानियाँ भी शामिल है। संवादों में मैंने उन्हीं बच्चों के सपनों के कुछ विचारों, उनकी कहानियों को शामिल कर लिया। रंग सज्जा के लिए मैंने बच्चों के चित्र कलाकृतियों का भी इस्तेमाल किया। बच्चों का नगर ही नाटक का थीम था। मैदान में इसके कुछ निजी प्रदर्शन किए, और चूंकि एलिजाबेथ की काम करने की अपनी एक शैली थी, इसलिए स्कूल के शिक्षकों और सारे बच्चों को भी उसमें शामिल कर लिया। नाटक खत्म होने तक केवल स्टेज ही नहीं, लान के सभी कोनों में हस्तकला की सामग्रियाँ सजा दी गई। चाय, मिठाई आदि के कुछ स्टॉल लगाए गए। बच्चों के नगर की थीम यही थी कि हम अपना निजी शासन चाहते हैं। उस वक्त मैं यही सोच रहा था कि मैं बच्चों के थिएटर के लिए स्वयं को समर्पित कर दूंगा। बच्चों के थिएटर के प्रति समर्पित होने का भाव किन कारणों से आया होगा, इसका विवेचन भी महत्वपूर्ण है। बच्चों के सहज और सरल दुनिया का मोहक तत्व तो उन्हें जरूर आकर्षित कर रहा होगा। अपने आसपास की समुची दुनिया को देखने और समझने कि बच्चों की निश्चल और जिज्ञासा भरी निगाहें भी हबीब तनवीर के मन को लुभाने कारगर रही होंगी। लेकिन इसके अतिरिक्त शायद एक बात और उस समय उनके मन में मथ रही हो। नैसर्गिक प्रतिभा संपन्न ये बच्चे यदि एक सही तरह का भारतीय पद्धति का या वर्तमान परिवेश के रंगमंचीय जरूरतों की पूरा करने वाला प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें तो शायद हबीब तनवीर का अभिष्ट भी पूरा हो सके। इस नई रंग भाषा या रंगमंची माहौलों की तलाश में बम्बई छोड़कर दिल्ली आए थे, उसका अभिसंधान उन्हें इन बच्चों के साथ नाटक करने में नजर आया होगा। इसी दौरान उन्होंने बच्चों के साथ अपने नाटक प्रयोग किए। हर मौसम का फूल, दूध का गिलास, चांदी का चम्मच आदि लगभग 7 नाटक उन्होंने लिखे और प्रस्तुत किए। इसमें उन्होंने भरपूर लुफ्त उठाया। यह लुफ्त सिर्फ बच्चों के साथ काम करने का आनंद ही नहीं था, बल्कि उन्हें खुद ही मनुष्य के स्वभाव के उन अभुज परतों को कुरेदने का मौका मिला जो उनके अपने रंग कर्म के लिए बुनियाद की तरह काम कर सके। बहरहाल ये प्रसंग ऐसा कि जिस पर बहुत कम या कहिए ना के बराबर चर्चा हुई, लेकिन शायद ये प्रसंग हाशिए पर डाल दिए जाने के काबिल नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण हबीब तनवीर का भूत था, जिससे प्रेरित होकर वे पाश्चात्य शिक्षण पद्धति के विरुद्ध एक ऐसी शिक्षण पद्धति की तरह आकर्षित हुए जिसकी जड़ें पूरी तरह अपनी धरती में जमी हुई थी। इस दृष्टि से हबीब तनवीर का यह प्रयोग काल बड़ी अहमियत रखता है। उनके ये विचार बाद में एक लेख में भी प्रकट हुए। आज़ादी के तुरंत बाद जो सबसे बड़ा संकट हमारे राष्ट्र के सामने आया वह था अपनी पहचान का संकट, अपनी अस्मिता का रक्षा का संकट। हम एक ऐसे राष्ट्र की तरह नजर आने लगे जो न केवल अपनी तकनीक में बल्कि अपने शासन तंत्र, अपने शिक्षा पद्धति, अपने अपेक्षाओं, अपनी सोच की दिशा और अपने रंग कर्म में भी पश्चिम का अनुसंधान करने वाला हो गया है, अंधानुकरण करने वाला हो गया है। पश्चिम के अंधानुकरण का सबसे बुरा प्रभाव हमारे रंगमंच पर पड़ा। पश्चिमी नाटक अवधारणाएं उस समय अपने चरम विकास पर थी। अभिजात वर्ग शेक्सपियर, शाह, इब्सन, चेखव आदि नाटककार को भारतीय रूपांतरकारों की ओर उन्मुख हुआ और धीरे धीरे यथार्थवादी रंगमंच का वर्चस्व स्थापित हो गया। ऐसा नहीं कि इस अवधारणा के विरुद्ध हमारे देश में रंगचित्रकों का ध्यान आकृष्ट न हुआ हो। संस्कृत नाटकों के अनेक प्रयोग पूरे देश में हुए, लेकिन वे प्रयोग पाश्चात्य रंगमंच को कोई चुनौती देने में सफल नहीं हो सके। इसमें सबसे बड़ा कारण अभिनेताओं के प्रशिक्षण का अभाव था। भारतीय नाट्य परंपरा जिस शैली पर अभिनय की मांग कर रही थी उस अभिनय पद्धति का विकास नहीं हुआ। शहरी अभिनेताओं को जिस वार्षिक अभिनय का अभ्यास था वह पूरी तरह यथार्थवादी शैली पर आधारित था। शैलीबद्धचारियों, भंगिमाओं और मुद्राओं से उनका कोई परिचय नहीं था। हमारे शास्त्रीय नृत्य और संगीत में गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रशिक्षण की जो पद्धति चली आ रही है रंगमंच के अभिनेताओं को स्वरूप नहीं थी। दूसरी ओर इन अभिनेताओं का गुरु शिष्य परंपरा में कोई विश्वास नहीं था, अतः उनके अभिनय में एक प्रयत्न साध कृत्रिम अभिनय का आस्वाद नजर आने लगा। सहजता और स्फूर्ति पूरी तरह नष्ट हो गई। उनका अभिनय आरोपित और बनावटी लगने लगा। यथार्थवादी शैली के नाटकों में जो अभिनेता अत्यंत सफल रहे वही इस शैलीबद्ध अभिनय में पूरी तरह विफल हो गए। इन संस्कृत नाटकों के प्रयोग का एक लाभ यह जरूर हुआ कि बौद्धिक धरातल पर चर्चाओं और बहस मुबासों की शुरुआत हो गई। फिर भी भारतीय नाट्य परंपरा की पुनर्प्रतिष्ठा में पिछाकृत सफलता नहीं मिली। इस दिशा में हबीब तनवीर का यह सोच अत्यंत महत्व का सिद्ध हुआ कि नाट्यशास्त्र का अनुकरण करने से रंग परंपरा की पुनर्प्रतिष्ठा दिशाते हैं। नाट्यशास्त्र के गोमुख से आने वाली रंग परंपरा की धारा सूख गई थी और भारतीय जनजीवन से इसका प्रत्यक्ष प्रभाव नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ग्रामीण अंचलों में इस धारा से बनने वाले छोटे छोटे पोखरे और सरोवर अभी भी सूखे नहीं। आंचलिक क्षेत्रों की इन जीवंत नाट्य परंपराओं से हबीब तनवीर का परिचय हो चुका था, इसीलिए वे अपनी धरती से रची बची पारंपरिक नाट्य शैली के प्रति अधिक प्रोत्साहित उन्होंने कहा। संस्कृत रंगमंच का विकास लगभग 1000 वर्ष पूर्व पहले ही अवरुद्ध हो गया था। दूसरी ओर भारत की लोक नाट्य परंपरा अंग्रेजी हुकूमत के विध्वंसक दौर के बावजूद निरंतर परिवर्तित और विकसित होती गई। बुनियादी तौर से भारतीय लोक नाट्य रूप इन अवधारणाओं का अनुमोदन करते हैं जो शास्त्रीय नाट्य परंपरा के हैं। दोनों अवधारणाएं अरस्तु की 3 एकताओं यानी समय, स्थान और कार्य की संगतियों को अस्वीकार करती हैं। दोनों ही रस्म उत्पत्ति की अवधारणा का पोषण करती हैं। भारतीय रंगमंच और पाश्चात्य रंगमंच के इस बुनियादी अंतर को नाट्यशास्त्र के पंडितों द्वारा भी भुला दिया गया है। हबीब तनवीर की इस बोध ने उन दोनों पक्षपाती की ओर मारक प्रहार किए जो उस समय रंग कर्म में सक्रिय थे, अथवा उनके विचारों से भारतीय रंग परंपरा जैसे विषय को दो विभिन्न धाराओं में विभाजित कर दिया गया। उस समय एक वर्ग ऐसा था जो वैचारिक धरातल पर भारतीय रंगमंच रंग परंपरा का सही परिप्रेक्ष्य में आकलन कर रहा था। डॉक्टर राघवन, डॉक्टर कपिला वात्स्यायन, आद्य रंगाचार्य, जगदीश चंद्र माथुर, सुरेश अवस्थी, निमिचंद जैसे लोग भारतीय नाट्यशास्त्र के उन महत्वपूर्ण तत्व को विश्लेषित कर रहे थे जो पौर्वात्य रंग अवधारणाओं को पाश्चात्य रंगभूमि से पूरी तरह अलग करके देख रहा था। लेकिन व्यावहारिक रंगकर्म की दिशा में स्वर्गीय सम्मित्र जैसे कतिपय निर्देशकों अभिनेताओं के सत्प्रयास हिंदी प्रदेश में कोई निर्णायक छाप छोड़ने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। ऐसे दुस्साध्य समय में हबीब तरवी ने अपने खरे और दो टूक विचारों से दोनों ही पक्षों को अपना विरोधी बना लिया जिनका रंगकर्म वर्चस्व स्थापित था। उस समय संस्कृत और नाट्यशास्त्र के अधिकांश विद्वान यह स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं थे कि भारतीय परंपरा के नाम पर नाट्यशास्त्र में वर्णित सिद्धांतों, सूत्रों और नियमों में किसी प्रकार कोई छूट ली जाए। उनके विचारों से यह नाट्यशास्त्र के साथ खिलवाड़ करना था और भारतीय संस्कृति को दूषित करने का कुप्रयास था। दूसरी ओर अभिजात वर्ग नाट्यशास्त्र को एक ऐसा ग्रंथ मानता था जिसका आधुनिक परिवेश से किसी किस्म का कोई संबंध नहीं रह गया। उनके अनुसार नाट्यशास्त्र एक पुरातत्व के महत्व का ग्रंथ था जो आज के मनुष्य संवेदनाओं और अपेक्षाओं का उत्तर देने में पूरी तरह असमर्थ था। लेकिन हबीब तरवी इन शताब्दियों के अंतराल के बावजूद अपने आंचलिक क्षेत्र में अपनी परंपरा के सातत्य और निरंतर की धारा देख रहे थे। उनका विचार था कि हजारों वर्षों की विभिषिकाओं और टकराहट के बावजूद हमारे देश के आंचलिक क्षेत्र में भारतीय संस्कृति और रंग परंपरा आज भी बनी हुई है। अंचल के लोग अपनी परंपरा को जीवित रखते हुए लेकिन हम ही उससे कट गए हैं। अपनी रंग परंपरा को नए सिरे से देखने परखने के लिए उनके पास जाना होगा, उन्होंने कहा। यह सर्वविदित है कि सामाजिक ढांचे में बदलाव के साथ लोगों के सांस्कृतिक ढांचे में भी बदलाव आएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने भविष्य की संभावनाओं को समझे बगैर और अपने अतीत को पूरी तरह कुचल कर रख दें, यह जरूरी नहीं लगता। प्राचीन को संभवतः आत्मसात करके ही नए का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम भारतीय संस्कृति की जीवन परंपराओं में निरंतर होते बदलाव को गौर से देखें। यह हमारी संस्कृति पहचान से संबंधित प्रश्न है जो विदेशी शासन के कारण हमारी नज़र में धुंधला हो गया था। ब्रिटिश साम्राज्य के 200 वर्षों की गुलामी का दुष्प्रभाव आज शहरी अभिजात वर्ग पर स्पष्ट रूप से नजर आता है। शहरी रंगमंच पश्चिम की भोंडी नकल के रूप में भारतीय रंगमंच का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो विचारणीय है। रंग परंपरा का पुनर्प्रतिष्ठित करने के बारे में अभी तनवीर की यह सोच शुरुआती दौर में काफी साफ साफ रही। बाद के वर्षों में सोच में इजाफा हुआ सिर्फ इतना हुआ कि उसे अमली जमा कैसे बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने एक नहीं कई प्रयोग किए। सफलता या विफलता के उनके मानदंड अलग थे। दर्शकों की पसंदगी या नापसंदगी से ज़्यादा बड़ी बात यह थी कि जिस मुहावरे की उन्हें तलाश थी उसका स्वरूप कैसा बन रहा है। क्या वह अपनी पूरी तरह कलात्मक है? क्या वह संप्रेषण के स्तर पर सफल है? क्या हबीब तरवी अपने मन की बात को पूरी शक्ति और सामर्थ्य से साथ कह पाने में सफल हैं? एक तरफ ये कोशिश और दूसरी तरफ एक कशिश थी। वह भी जिंदगी में भारी दखलंदाजी करने वाली राजनीति। यह कहा जा चुका है कि इप्टा के जमाने से ही हबीब तरवी मार्क्सवादी विचारों से बेहद प्रभावित थे। कहा जा सकता है कि उनके सृजनात्मक व्यक्तित्व की नींव में जो दर्शन था वह मार्क्सवादी था। लेकिन क्या उस समय से राजनीतिक विचारों से पोषित नाटकों को ही श्रेष्ठ रंगकर्म की संज्ञा देते थे? रंगकर्म और राजनीति के संबंध में उनके विचार बहुत स्पष्ट है। मैं इस बात पर बहुत कायल हूँ कि एक क्रिटिकल किस्म का थिएटर, पॉलिटिकल किस्म का जो पार्टियों से आज़ाद होना चाहिए, वह तबका जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है, आर्ट और कल्चर से वास्ता रखता है, वह समझता है कि इस तरह का इंटरेस्ट लेना जिससे बाकायदा मुल्क के पॉलिटिकली सिस्टम पर असर हो हल्का काम है, जो कि सरासर गलत है। मैं समझता हूँ कि एक आर्टिस्ट को, एक कलाकार को बहुत गर्मजोशी के साथ इसमें हिस्सा लेना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मात्र इसी किस्म का नाटक होना चाहिए या थिएटर पनपना चाहिए, लेकिन अहम सवाल इस बात का है कि हर किस्म का नाटक और थिएटर पनप रहा है सिवाय इस किस्म के नाटक और थिएटर के। हबीब तनवीर का शुरू से ये विचार रहा है कि सत्ता के समर्थन में नहीं बल्कि सत्ता के विरोध में सच्ची कला पनपती है, जिसका सीधा संबंध आम आदमी की तकलीफों, दुखों और उनकी विशेष व्यवस्थाओं से होता है। शासक और शासित के बीच की दूरियां ही मानव जीवन की विसंगतियों, विडंबनाओं को जन्म देती है। इन्हीं को पैने तरीके से रेखांकित करना कला का सबसे बड़ा धर्म है। यह सामाजिक प्रतिबद्धता अनिवार्य रूप से राजनीतिक दलों या सिद्धांतों की प्रतिबद्धता हो यह जरूरी नहीं। हबीब तनवीर प्रतिबद्धता या कमिटमेंट के बारे में कहते हैं, कमिटेड होने का लाजमी तौर पर यह मतलब नहीं है कि आप किसी पार्टी से कमिटेड हो और यह कि आप सतही किस्म के, उथले किस्म के नाटक ही लिखें। श्रेष्ठ साहित्य का मतलब अगर आर्ट फॉर आर्ट सेक है तो यह गलतफहमी है। अगर कलाकार अच्छा है तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। वह अपनी कला की इंटीग्रिटी छोड़े बगैर और अपने कमिटमेंट को आर्टिस्ट ढंग से प्रोजेक्ट कर सकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ प्रोपेगेंडा नाटक नहीं हो, लेकिन कमिटमेंट बड़ा गहरा जा सकता है और बगैर कमिटमेंट के श्रेष्ठ शायद का कंसेप्शन में इस समझ में गलत है। आगरा बाजार के प्रदर्शन से पहले तक हबीब तनवीर के विरोधी अधिक मुखर थे और उनके समर्थक मौन, क्योंकि उन्हें तब तक अपने विचारों को व्यवहारिक रूप से मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला था। सैद्धांतिक रूप से कुछ बातों से सहमत होते हुए भी सम्रांत वर्ग के रंगकर्मी उनके विचारों में व्यवहारिक मानने से इनकार करते रहे, लेकिन इस जबरदस्त विरोध और प्रतिरोध के बावजूद वे अपने बोध के सहारे नई राह खोजने की जिद पड़े रहे। आखिर उन्हें एक छोटा सा अवसर मिला जो धीरे धीरे इतना महत्वपूर्ण बन गया तथा समकालीन भारतीय रंगमंच का मील का पत्थर साबित हुआ। 1954 में उन्होंने जामिया मिलिया के छात्रों और ओखला गांव के छात्रों को लेकर नज़ीर अकबरावादी कविताओं पर एक छोटा सा रूपक तैयार किया। यह रूपक इतना पसंद किया गया कि आहिस्ता आहिस्ता उसने भरे पूरे नाटक की शक्ल अख्तियार कर लिया और केवल हिंदी प्रदेश में नहीं बल्कि सारे देश में जोरदार चर्चा का विषय बना। यह नाटक था आगरा बाजार, जिसकी चर्चा विस्तार से एक अलग अध्याय में की जाएगी। इस नाटक के तुरंत बाद हबीब तनवीर को एक अवसर मिला लंदन जाकर नाटक अपने चरण प्राप्त करने का। वे 1954 में ही यानी आगरा बाजार के पहले प्रदर्शन के तुरंत बाद रॉयल स्कूल ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स रॉडम पर शिक्षण प्राप्त करने अपने देश की मिट्टी से दूर चले गए, लेकिन वहाँ भी उस देश की मिट्टी की गंध ने उनका साथ नहीं छोड़ा।